ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناهم من عبادنا। क़ुरान पाक में बारी ताला का ये इरशाद कि उसके बाद किताब और सुन्नत के उलूम का वारिस बनाया हमने अपने उन बंदों को जिनको अपने बंदों में से चुना और मुंतखब किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नवरल्लाहु मरकज़हू मारिफुल क़ुरान में फरमाते हैं कि हज़रात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आयत उम्मत मोहम्मदिया के लिए है, उसकी उलमा बराहे रास्त इसका मिसदाक हैं और दीगर हजरात जो हैं वो वास्ते उलमा। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के उलमा के लिए लफ्ज़ इस्तिफा का इस्तेमाल फरमाया है। क़ुरान पाक में आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इस्तिफा हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रात मलाइका के लिए इस्तेमाल फरमाया है। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह ताला फरिश्तों में से कुछ अफराद को बतौर अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमाते हैं जो अल्लाह के नबियों तक अल्लाह का पैगाम ले जाते हैं, और लोगों में से भी कुछ अफराद को अल्लाह तबारक व तआला चुनते हैं जो अल्लाह के दूसरे बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं। तो लफ्ज़ इस्तिफा इसालतन तो क़ुरान में इन्हीं दो जमातों के लिए हज़रात अम्बिया और हज़रात मलाइका के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस आयत करीमा में सुम्मा वरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना में इसको अल्लाह तबरक तआला ने इस उम्मत के अहले इल्म के लिए इस्तेमाल फरमाया। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। अगरचे इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा के दर्जात के अंदर इख्तिलाफ़ है, कुल्ली मुशक्किक है, किसी में ये सिफत जो है अला वजील कमाल पाई जाती है, किसी में कुछ कम दर्जे, लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का इस लफ्ज़ को इस उम्मत के लिए इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा एजाज है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया। और इसी आयत की गोया रोशनी में हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो इरशाद देखें और समझें जो आपने फरमाया है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबियाए व इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखदहु अखद बिहज्जिन वाफिरिन। हज़रात उलमा जो हैं वो हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशीन हैं, और हज़रात अंबिया ने दीनार और दिरहम विरासत में नहीं छोड़े बल्कि इल्म छोड़ा है, और जिसने इल्म हासिल किया बहुत बड़ी दौलत गोया उसने हासिल कर ली। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इसी आयत करीमा की तफसीर है, और इससे मालूम हुआ कि ये विरासत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई अहले इल्म को, जो अहले इल्म सही उसूल के मुताबिक क़ुरान और सुन्नत की इशाअत की खिदमत का काम पूरे इखलास और एहतसाब के साथ अंजाम देते हैं, इस आयत की बुनियाद पर कहा जा सकता है کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور چنیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات علماء سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، بلکہ میرا ارادہ تمہاری مغفرت کا تھا، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور اہل علم کو ایک ممتاز مقام پر جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں جانتا تھا، میں نے اپنا علم تمہارے سینوں میں اس لیے رکھا کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کا حق ادا کرو گے، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اس نے علم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. در مختار کے مقدمے میں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتے. تو بہرحال یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب اصل دیکھنا یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت یہ کوئی فخر اور افتخار کا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. حضرات انبیاء کی جانشینی کا مطلب یہ ہے کہ جو جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا جاتا تھا، وہی کام اب حضرات علماء کو انجام دینے ہیں. تو اب کون سے وہ کام ہیں جن کے لیے حضرات انبیاء کو مبعوث کیا گیا؟ تو قرآن پاک میں سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چند مختلف آیتوں میں آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی دعا جس میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو اس میں ایک تو گویا تلاوت آیات، تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم، جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں بہت وضاحت سے لکھا ہے، ہمارے مدارس میں قرآن کے الفاظ کی تعلیم کا ایک سلسلہ تو جو ہے وہ ناظرہ کی شکل میں مکاتب میں بھی ہوتا ہے، ایک بڑا سلسلہ ہے. اور تحفظ القرآن جو ہے وہ بھی قرآن کے الفاظ ہی کی تعلیم ہے، اور تجوید و قرآت، یہ تین شعبے جو ہیں وہ دراصل تلاوت آیات سے تعلق رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے. جب بھی کوئی آیت یا چند آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کو جمع فرما کر ان کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسرے اوقات میں بھی باقاعدہ قرآن پاک کے الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھلاتے تھے. اگرچہ حضرات صحابہ جو ہے پیدائشی طور پر عرب تھے، اور اس دور کے اندر پیدا ہوئے تھے جب فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا، پھر بھی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب تک کہ باقاعدہ اس کو پڑھنا سکھایا نہ جائے وہاں تک کوئی اس کو پڑھ سکتا نہیں. حضرت حکیم الامت نے تو مثال کے اندر فرمایا، دیکھو الف لام میم پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی، اگر کسی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، عربی زبان سے واقف ہو، اس کے سامنے کر دو کہا یہ پڑھو تو وہ کیا پڑھے گا، وہ تو علم پڑھے گا بہت بہت، تو حالانکہ یہ درست نہیں ہے. تو علم ترک ففال عرب و کبھی اصحاب الفیل میں جو الف لام میم ہے وہ، اور سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ، دونوں کے پڑھنے میں یہ فرق اسی وقت معلوم ہوگا جب باقاعدہ استاد کے پاس سیکھا جائے. तो बहरहाल एक तो कुरान के अल्फाज की तालीम ये भी बड़ी अहमियत रखती है। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब ने वरअल्लाहु मरकदहू जब माल्टा की कैद से रिहा होकर तशरीफ लाए तो हजरत मुफ्ती शबी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा दारुल में मजलिस थी, आपकी बड़े बड़े उलमा उस मजलिस में शरीक थे। हजरत ने फरमाया भाई हमने तो जेल की तन्हाइयों के अंदर बहुत सोचा तो मुसलमानों की दुनियावी और दीनी पस्ती और जिल्लत का इलाज दो ही चीज़ों में नज़र आया। एक तो यह है कि कुरान पाक की तालीम को आम किया जाए लफ्ज़न और मानन। लफ्ज़न का मतलब यह है कि कुरान के अल्फाज को के सिखाने का सिलसिला मकातिब को कायम करके, और मानन का मतलब यह है कि मदारिस में तो है ही लेकिन तमाम लोग मदरसे में आते नहीं हैं दरसे कुरान के सिलसिले। पहले इल्म को चाहिए कि अपनी अपनी जगह पर दरसे कुरान के सिलसिलों को कायम करे, उसके बड़े बरकात होते हैं और उसकी वजह से लोगों के आमाल के अंदर, अखलाक के अंदर, अकायद के अंदर जो है बड़ा फ़र्क आता है, बड़ी उससे इसलाह होती है, इसलिए उसका सिलसिला हो। और दूसरी चीज़ वही वालिमुहुल किताब वलहिकमा, हिकमत से मुराद जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तशरीह फरमाई है सुन्नत, किताब व सुन्नत की तालीम देना, तो वो सिलसिला भी होना चाहिए। एक तो हमारे मदारिस में होता है, वो तो एक महदूद दर्जे में होता है कि जो तलबा हमारे पास आते हैं हम उनको ये चीज़ सिखलाते हैं, लेकिन अवाम के अवामी पैमाने पर भी दरस हदीस के हल्के वाकायदा जैसे दरस कुरान के हों, दरस हदीस के हल्के भी कायम होने चाहिए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों के सामने पेश की जाए। और वयुज़क्कीहिम, तज़किया अखलाक का, बुरी आदतों से, बुरे अखलाक से लोगों को पाक साफ करने के लिए जो तरीक़े हमारे बुज़ुर्गों ने बतलाए हैं उसकी तरफ भी हमारे अहले इल्म को ख़ास तौर पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमने अपने बुज़ुर्गों की तरफ निस्बत करते हुए ये तदरीसी सिलसिले को तो इख्तियार किया है और अपने अकाबिर का जब हवाला देते हैं अपने इन खिदमात के मामले में तो इसी के लिए देते हैं, लेकिन उन हजरात या अकाबिर को अल्लाह तबारक तआला ने जो इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, जिस बुनियाद पर अता फरमाया, वो तो दरअसल उनके वो मुजाहदे और रियाजतें हैं जो उन्होंने अपने नफ्स की इस्लाह के सिलसिले में किए हैं, वो हैं। ज़रूरत है उसकी कि उसकी तरफ तवज्जो की जाए। हजरत नानोत्री और हजरत गंगोही रहमहुल्लाह इल्म के पहाड़ थे और इल्मी एतबार से इतना ऊंचा मकाम था कि जिसका कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद अपने नफ्स की इस्लाह के लिए उन्होंने हजरत हादी साहब रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ कायम किया। मालूम हुआ ये चीज़ बड़ी अहम है, बल्कि इन हजरात को अल्लाह तबारक तआला ने और हमारे तमाम ही अकाबिर को जो मकबूलियत अता फरमाई, उस मकबूलियत में बड़ा दखल उनके इसी इस्लाह नफ्स वाले अमल को है। ज़रूरत इसकी है, वरना हम भी ये सारे काम अंजाम देते हैं, आखिर वो बात हमें क्यों नहीं हासिल है। वो हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक सवाने दिमश्क के एक इदारे की तरफ से शाये हुई थी, तो उसके मुकदमे में जो है उसका वहाँ दिमश्क यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामियात के जो जिम्मेदार थे डॉक्टर सईदुल हक, उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि दिमश्क के अंदर शेख अली दक्र नाम के एक बड़े आलिम थे, वो एक मस्जिद के अंदर इमामत कराते थे और फजर की नमाज के बाद उनका कुरान का दर्स होता था। लोग उनके उस दर्स में शिरकत के लिए शहर के गोशे गोशे से आते थे, मस्जिद छोटी थी भर जाती थी, मस्जिद के बाहर सड़कों के ऊपर लोग चटाइयाँ बिछा करके शरीक होते थे, आवाज़ नहीं पहुँचती थी, उसके बावजूद मजमे में शरीक लोगों का हाल ये होता था कि उनकी आँखों से आंसू बहते थे और उनकी दाढ़ियाँ तर होती थी। एक मरतबा उनके एक शागिर्द ने उनसे पूछा, हजरत हम भी तो जो है कुरान की तफसीर करते हैं, दरस देते हैं और अजीब व गरीब निकात कितुब तफसीर के मुताले के बाद लोगों के सामने बयान करते हैं, लेकिन हमारे दरस में वो तासीर नहीं जो आपके दरस में है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी इस्लाह के लिए कहता हूँ, रोज़ाना तहज्जुद की नमाज में कुरान के 15 पारे इसीलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस दरस के अंदर असर रखे। तो ये चीज़ होती है उसके पीछे कारामद। तो हमारे अंदरूनी आमाल जिन जो हमारे अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ है, जब तक कि हम उसको मजबूत नहीं करेंगे वहाँ तक हमारी ये ज़ाहिरी जो इल्मी खिदमात हैं उसमें जान पड़ सकती नहीं है, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक उदु इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़ति हसनत वजादिलहुम बिल्लती ही हसन, गोया दावत इल्लाह, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और आपको जिन कामों के लिए मबूस किया गया था उसमें से एक ये भी है, उसका भी अहतमाम। और फिर उसी की ज़िम्न में जो है जो गुमराह जमाते हैं या जो गुमराह ये जो दूसरे दीन वाले हैं अदियान बातिना वाले, उनके साथ कभी जो है ना ये इल्मी मुज़ाकरे की भी नौबत आती है, उनके साथ मुनाज़रे की। वजादिल हुमिल्लती, ये मुजादला का काम अवाम नहीं कर सकते, ये तो अहले इल्म, और अहले इल्म भी वही जिनकी इस्तेदाद आला दर्जे की और पुख्ता हो वही ये काम अंजाम दे सकते हैं। और जब आप इशाअत इस्लाम का काम अपने हाथ पर लेंगे तो इसकी नौबत ज़रूर आएगी। मुखालिफिन की तरफ से सवालात होंगे, इश्कालात होंगे, और उनके जवाबात के लिए और उनको जो है मुतमईन और ख़ामोश करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा, वजादिलहुम बिल्लती वाला। तो ये भी अहले इल्म का काम है। और कुरान में एक और जगह पर बारी ताला का इरशाद है, या अमरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़ऊ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो उनको भली बात का हुक्म करते हैं, अमर बिल मारूफ, भलाइयों के मुतालिक आम तौर पर लोगों के अंदर उसकी इशात होनी चाहिए जो है, इसकी तरफ भी ख़ास तवज्जो हो। और वनहाउमनिल मुनकर, मुनकरात से रोकने वाला सिलसिला आदत मौलाना शाह बराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे कि नहीं अनिल मुनकर जो है गोया कुरान में तो बारी ताला का इरशाद है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यामुरून बिल मारूफ वयनहाउन अनिल, उनके एक जमात होनी चाहिए जिसका बाकायदा यही काम हो, इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो। आजकल ये दोनों शोबे भी जो हैं बहुत उलमा की बेल्तफाती का शिकार हैं, उसकी तरफ तवज्जो, बड़े समझदारी के साथ इन कामों को अंजाम देना चाहिए। उसमें कोई ऐसा तरीक़ा जो लोगों को नफरत पैदा करे नहीं। दूसरा सर ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को जब यहाँ यमन के दो अलग अलग इलाकों के ऊपर हाकिम और ज़िम्मेदार बना करके भेजा, तो उस वक्त उन दोनों हजरात को जो नसीहत फरमाई थी, यस सरा वाला तो आसरा, आप लोगों पर आसानी कीजिए, उनको दुश्वारी में न डालिए। गोया दीन के लिए ऐसा ही तरीक़ा दीन को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनाना चाहिए जिसकी वजह से लोग दीन को आसान समझें, दुश्वार न समझें। एक ही चीज़ होती है लेकिन उसको पेश करने का अंदाज़ बदल जाने की वजह से सामने वाले के ऊपर उसका असर अलग अलग पड़ता है। तो ज़रूरत है तरीक़ा वो अपनाना चाहिए जो लोग आसानी के साथ उसको कबूल कर लें। वबशरा वला तुनफ़रा, और लोगों को बशारत सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, गोया इस अंदाज से। और अब देखो शुर्रा इस मौके पर फरमाते हैं कि बशरा का जो है वो मुकाबिल तो है वला तुनज़िरा, वो यहाँ नहीं लाए, बल्कि उसके मुकाबले में लाए यहाँ पर वला तुनफ़रा। और तुनफ़रा वला तुनफ़रा का मुकाबिल होना चाहिए वह अन्नेसा, कि लोगों को मानूस करो और नफ़रत न दिलाओ, यानि दीन के अहकाम को लोगों के दरमियान आम करने के लिए ऐसा तरीक़ा अपनाना चाहिए कि लोग आपसे जुड़े, मानूस हों, और ऐसा ना हो कि जो आपके पास आए हुए हैं वो भी आपके नामुनासिब तर्ज़ अमल का शिकार होकर आपसे दूर हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जो एक मरतबा आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया और आपसे वाकिफ़ हो गया, फिर वो आपका आशिक इज़हार हो जाता था। इसलिए ये उनस वाला तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, नफ़रत वाला तरीक़ा नहीं होना चाहिए। और उसी में आखिर में एक नसीहत फरमाई, व ततावा, और मिलजुल करके, यानी तुम्हारी तरफ से तुम्हारे मातातों को जो चीज़ें बतलाई जाए उनमें इत्तेफाक होना चाहिए, यानी यकसा होनी चाहिए, अलग अलग चीज़ न हो। उलमा का और बड़े लोगों का ऊपर का इख्तिलाफ जो है अपने मातहतों पर बहुत ज़्यादा मुअसर होता है, इसलिए इसको ख़ास तौर पर अब जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अहले इल्म इल्मी खिदमात को अंजाम देने के लिए वो आपस में राय का इख्तिलाफ होता है, इस राय के इख्तिलाफ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस इख्तिलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि अहले इल्म का जो मकाम है उस मकाम को हम जो है मजरूह करें, बल्कि जो हमारा मुखालिफ है और हमारे गोया ख्याल के अतबार से वो गुमराही का शिकार है, उसके साथ भी अगर वो अहले इल्म में से है तो अंदाज ऐसा इख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से अहले इल्म का जो मकाम है उनका अदब व एहतराम है वो बाकी रहे। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिसों में बहुत हाजिर रहा, कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब भी मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का नाम लेते थे तो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत की मजलिस में किसी ने खाली कह दिया अहमद रज़ा खान, बस हजरत रहमतुल्लाह अलैह उस पर बहुत सख्त नाराज़ हुए, फरमाया कि भले हमारा उनके साथ इख्तिलाफ़ राय है लेकिन जो है उनके जो मकाम और मरतबे, वो आलिम दीन तो हैं, उनके मकाम और मरतबे का अदब एहतराम जो है ज़रूरी है, हमें चाहिए कि जो है हम उनका नाम उसी अदब एहतराम से लें, ये इख्तिलाफ़ राय के नतीजे में उनकी तौहीन और बेअदबी हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं हो जाती। हजरत नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जो है अपने शागिर्दों के साथ हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब और हजरत मौलाना अहमद हसन साहब अमरोही रहमतुल्लाह अलैह और अमीर शाह खान साहब, हाजी अमीर शाह खान साहब जो अमीर रिवायात के रावी हैं, उन्हीं की ये रिवायत है वाकया। वो फरमाते एक मरतबा दिल्ली के अंदर क़याम पजीर थे तो रात को ये सब हजरत तो अपने अलग थे, वहाँ आराम फरमा रहे थे, ये साथी लोग दूसरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तो मौलाना अहमद हसन साहब अमरोही ने कहा भाई कल हम फजर की नमाज लाल कुएं की मस्जिद के इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे, उनकी किरात बहुत अच्छी है। तो उनके इस कहने पर हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एकदम उन पर नाराज़ हो गए कि तुमको गैरत नहीं आती, वो आदमी यानी वो इमाम जो है वो हमारे हजरत की तकफीर करता है और तुम उसके पीछे नमाज पढ़ने की बात करते हो, ये गोया उन्होंने कहा तुम्हारी गैरत क्यों इसको बर्दाश्त करती है। अब यह अहबाब ये शागिर्द आपस में बातें कर रहे थे, हजरत के कान में भी आवाज़ पहुंच गई होगी, सुबह को हजरत ने खुद ही फरमाया भाई हम तो लाल कुएं की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे फजर की, इन सब को ले करके आप वहीं पर नमाज के लिए गए। नमाज से जब फारिग हुए तो इमाम साहब ने नए लोगों को देखा, पूछा ये कौन है, तो किसी ने बतलाया कि मौलाना कासिम नानोतवी हैं, तो एकदम जो है मुतासिर हुआ कि मैं तो इनकी तकफीर करता हूँ और ये तो मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए, आकर के उसने माजरत की कि हजरत मेरी गलती माफ़ करें, मैं तो आपकी तकफीर करता हूँ और आप तो इतनी वसत ज़र्फ़ी से काम ले रहे हैं कि आप मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए मेरी इब्तिदा में। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि वैसे जो आप तकफीर करते हैं ऐसे उसूली तौर पर देखा जाए तो चूँकि आपको ये बात पहुँचाई गई है कि हम लोग नऊज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं, जाहिर है कि कौन मुसलमान ऐसा होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले को मुसलमान समझता हो, मैं भी तो ऐसे आदमी को काफिर ही समझता हूँ, तो आप इस बुनियाद पर मेरी तकफीर करते थे, ये तो आपके गोया गैरत ईमानी का तकाजा है, लेकिन मैं आज आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ था कि जब आपको हमारे मुतालिक किसी ने ऐसी बात पहुंचाई तो आपको इस बात की रिवायत की तहकीक कर लेनी चाहिए थी, मैं आज आपको ये बतलाने के लिए आया हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करते, हम तो आपके ऐसे ही आशिक हैं जैसे आप कह रहे हैं। तो बहरहाल ये सुनना था कि वो इमाम जो है वो आपके कदमों में गिर गया, तो हकीकत तो यह है कि ये तरीक़ा आपस में जब तक के इख्तियार न किया जाए, अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ के लिए हुदूद कायम किए हैं, वहद हुदूदन फला तंतहिकूहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने हर लाइन के अंदर बॉर्डरें तय कर दी हैं, उन बॉर्डरों को क्रॉस मत करो, आपस के इख्तिलाफात के लिए भी हुदूद हैं शरीयत के मुकर्रर किए हुए। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-एतदाल फी मरातिब अर-रिजाल, उसके अंदर और उसके अलावा मौलाना अय्या शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा का रिसाला है इस मौजू के ऊपर कि आपस में उलमा के इख्तिलाफ के नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर कलाम करें, बल्कि एक इल्मी चीज़ है, इल्मी हद तक महदूद रहे, ऐसे मसाइल को लोगों के अंदर आम किया नहीं जाता, आवाम में नहीं, बल्कि ये मसाइल अहले इल्म तक महदूद रहें और हर फर आदमी अपनी राय को अपने दलाइल के ज़रिए से मुदल्लल करके बस फिर उसके बाद आगे ये इसरार नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी राय पर ही क्या करें, अमल करें। हमारे यहाँ अइम्मे अरबा का इख्तिलाफ जो है वहाँ किताबों में पढ़ाया जाता है और उसके अंदर हम पढ़ते हैं कितना बाद मसाइल में तो वो इख्तिलाफ कितना शदीद है। जैसे देखो किरात खल्फ इमाम का मसला, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इमाम के पीछे किरात करना क्या है, फ़र्ज है, कोई आदमी न करे तो उसकी नमाज नहीं होगी, और हनफिया के नज़दीक नहीं करना है। तो इतना शदीद इख्तिलाफ होने के बावजूद आज तक कभी किसी ने किसी की तकफीर नहीं की इस मसले पर। और भी बहुत सारे मसाइल हैं अइमे अरबा के, हम खुद किताबों में पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। तो हमारे मसाइल जो वक्त ये हैं वो तो जो है तरीक़ेकार का इख्तिलाफ होता है, तरीक़ेकार का जो इख्तिलाफ होता है उसकी बुनियाद पर तो किसी की तनकीस का किसी के ऊपर एतराज़ भी नहीं किया जा सकता। अलग तरीक़ा है, एक आदमी इस तरीक़े को मुसलमानों के लिए बेहतर समझता है, दूसरा दूसरे के लिए दूसरे तरीक़े को, वो अपने अपने तरीक़े को करें उसके मुताबिक। उसकी वजह से उसकी न तो तकफीर होनी चाहिए, न तनकीस होनी चाहिए, न तौहीन। या जंग आज़ादी के ज़माने में हमारे अकाबिर के अंदर जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, तो जमीयत के हमारे जो अकाबिर थे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और आपके दूसरे रफ़क़ा, उन्होंने कांग्रेस के साथ रह कर के गोया दुश्मन अंग्रेज़ का मुकाबला करना, उसको मुसलमानों के लिए कभी इनको निकालो कांग्रेस को यहाँ से, जबकि उसके बिलमुकाबिल हज़रत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकज़हू ने जो है लीग की राय को तरजीह दी थी, और उसके दोनों हजरात के अंदर इख्तिलाफ था राय का, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के अदब और एहतराम को छोड़ा जाए। किसी एक दूसरे के अदब और एहतराम को छोड़ा नहीं जा सकता। हजरत मियाँ साहब नवरल्लाहु मरकज़हू मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, और दारुल उलूम में आपके पास अबू दाऊद शरीफ थी, हमारी अबू दाऊद की सनद आम तौर पर उन्हीं के वास्ते से हज़रत शेख हिंद तक पहुँचती है, तो वो भी उसी राय के कायल थी जो हज़रत हकीमुल उम्मत नवरल्लाहु मरकज़हू की थी, और हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह की जो राय है उससे उनको इख्तिलाफ था, और अपने उस इख्तिलाफ का बरमला इजहार भी करते थे, लेकिन एक दूसरे के अदब व एहतराम में कोई कमी नहीं आती थी। यहाँ तक कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि देवबंद के अंदर बारिश नहीं हुई, रुक गई बारिश, तो उस पर हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया कि भाई इस्तिस्का की नमाज होगी। चुनांचे उस ऐलान के मुताबिक आबादी से बाहर सब लोग गए और हज़रत ने इस्तिस्का की नमाज पढ़ाई, दुआ भी की, लेकिन बारिश नहीं होना था नहीं हुई। हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह का कोई इख्तिलाफ़ राय था, उसके बावजूद आप भी अपने आदमियों के साथ उस नमाज में शरीक हुए। इसी तरह दूसरे रोज़ फिर ऐलान किया और फिर इसी तरह हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुई। तीसरे रोज़ फिर ऐलान किया तो हज़रत मियाँ साहब भी तीसरे रोज़ भी थे। अब नमाज पढ़ाने का जब वक्त आया तो हज़रत मियाँ साहब ने दरख्वास्त की हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज पढ़ा लूँ। हज़रत ने कहा ज़रूर शेख इस्लाम, उन्होंने नमाज पढ़ाई, लेकिन आज भी बारिश को नहीं होना था नहीं हुई, लोग महरूम वापस आए। तो हज़रत मियाँ मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मियाँ साहब तो पंज वक्ता फ़र्ज नमाज में भी कभी जो है जमात की इमामत कराते नहीं हैं, आज क्या बात हुई कि हज़रत ने सामने से चल कर के ये कहा। कब मैंने पूछा तो टाल दिया, फिर दोबारा बार बार इशारा के बाद हज़रत ने बताया कि भाई हज़रत साहिब कश्फ थे हज़रत मियाँ साहब, तो उनको ये कश्फ हो चुका था कि बारिश होने वाली नहीं है। तो हज़रत ने जवाब में कहा कि भाई देखो बारिश तो होने वाली नहीं थी, दो रोज़ से हज़रत दुआ कर रहे थे, तीसरे रोज़ भी अब अगर आज तीसरे रोज भी वो नमाज पढ़ाते और दुआ करते और बारिश न होती तो जो लोग उनके मुखालिफ हैं इस मसदाई के एतबार से उनको उन पर एतराज़ करने का मौका मिल जाता और वो उनके खिलाफ बातें कहते, देखो इन्होंने पढ़ा ही नहीं इसलिए नमाज नहीं हुई। बल्कि हजरत मियाँ साहब के जो मानने वाले थे, हजरत ने जब दरख्वास्त की ना तो बाद लोगों के दिल में तो ये ख्याल आया कि हजरत चूँकि साहिब कश्फ़ हैं आज तो बारिश होने वाली ही होगी इसीलिए हजरत ने नमाज के लिए कहा है। लेकिन नमाज के बाद आज भी दुआ हुई बारिश नहीं हुई। हजरत मियाँ साहब फरमाते मैंने कसदन इसीलिए पढ़ाई कि बारिश को तो नहीं होना है, वो तो नहीं होगी, लेकिन किसी आलिम के मुतालिक किसी के दिल में कोई दूसरी बात आनी नहीं चाहिए। अपने सियासी नज़रियात के मुखालिफ के साथ ऐसा मामला ये हमारे बुज़ुर्गों की तालीम है। इसलिए ज़रूरत है कि जो मसाइल यहाँ मैं हमेशा कहा करता हूँ आपके जनूबी अफ्रीका के अंदर मसाइल जो पेश आते हैं तो आपके यहाँ अहले इल्म की तरफ से इन मसाइल के सिलसिले में जो रवैये और जो है तरीक़ा अपनाया जाता है दूसरी जगहों के मुकाबले में ज़रा पुरतशद्दुद होता है। ऐसा पुरतशद्दुद रवैया हमने अपने हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं देखा। इसलिए अहले बात बल्कि बाद मसाइल तो ऐसे होते हैं जिनका दर्जा कोई फ़र्ज़ वाजिब का नहीं होता, उसके बावजूद उसमें ऐसा अंदाज कि उसकी वजह से बाकायदा अहले इल्म में उसकी बहसें होती हैं और ये चीज़ें अवाम तक पहुँचती हैं और अवाम के दिलों से फिर अहले इल्म का जो अदब एहतराम होना चाहिए उसमें कमी आती है। तो बहरहाल मेरी तो कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको इस बात के मुतालिक कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन चूंकि ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं इसलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे मसाइल और ऐसे एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ, लेकिन ऐसी बातों को तो वो ध्यान में भी नहीं लाते, कभी भी सामने वाले के ऊपर एतराज़ का कोई ज़रिया इसको बनाते ही नहीं। हालांकि आपस की मुखालफतें राय का इख्तिलाफ वहाँ भी हमारे अहले हक़ जो है और हमारे देवबंद के अंदर आपस में भी है, लेकिन उसकी वजह से किसी की ज़ातियात को न तो निशाना बनाया जाता है न ऐसे मसाइल को सामने रख करके उनके के ऊपर तनकीद की जाती है। इसलिए बहरहाल ये सिलसिला जो है यहाँ इस पर भी जो है रोक हो लगनी चाहिए। ज़िम्मेदार हजरात मिलजुल करके और ऐसी कोई गलत फहमी किसी की तरफ से फैलाई गई हो तो साहिब मामला से खुद इस सिलसिले में वजाहत तलब कर ली जाए और उसकी अपनी कोई राय हो तो उसकी राय अपनी राय है, हमें उसकी वजह से अपनी राय तो बदलना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से किसी की ज़ात को मखदूश न बनाया जाए तो इंशाअल्लाह उसकी वजह से पूरे इल्म अहले इल्म तबके का वक़ार और एहतराम और अदब और उसकी अजमत जो है आवाम के दिलों पर कायम होगी और उसकी वजह से दीन के काम में राहत आसानियाँ पैदा होगी। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए आपको।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व लाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना व लाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअदद मा तुहिब्बु व तरदा। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, तेरी मर्जियात पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा चला कर तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे क़ुलूब के अंदर डाल दे। ऐ अल्लाह हमारे असलाफ़ किराम तेरे नेक और साले बंदों ने जिस तरीक़े से तेरे दीन की खिदमत अंजाम दी हैं अल्लाह उन्हीं तरीक़ों को खिदमत दीन के मामले में अपनाने की और इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।